So, Hare Krishna, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। हाय बोल। हाथ जोड़ेंगे, सवा मिनट की मेडिटेशन, सवा मिनट की मेडिटेशन अच्छी मेडिसन, स्ट्रेस और तनाव से मुक्त होने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंद गाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, गौर सुंदर की जय, नित्यानंद महाशय की गौर प्रेमानंदे। भगवान श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। गौरंग महाप्रभु औदार्य का मतलब उधार, उधार का मतलब बहुत करुणा और उधार। औदार्य लीला है महाप्रभु की। औदार्य लीला का अर्थ है जो दूसरे का दुख नहीं देख सकता है, दूसरे का दुख नहीं देख सकता है, उसको बोलते हैं औदार्य लीला। दूसरे का उधार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पास वासुदेव दत्त प्रार्थना करने लगे। वैसे बहुत से हमको इस दुनिया में उदाहरण मिलते हैं कि लोग दूसरों को पाप दुख, उसके पास जाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, दूसरों के दुख के लिए लोगों ने अपनी जीवन दे दिया, ऐसे बहुत से हमारे को जीवन में उदाहरण मिलते हैं। लेकिन वसुदेव दत्त का ये भाव महाप्रभु के सामने बैठ के क्या कहते हैं सुन लीजिए। जीवेरा दुख देखी मोर हृदय बिद्रे। सबसे ज्यादा वैष्णव को किस चीज का दुख होता है? दूसरों का दुख नहीं देख सकते हैं। वैष्णवा सो जो पीर पड़ाई जाने, जो दूसरे को दुख को जानता है उसको वैष्णव कहते हैं। दूसरे का दुख देख नहीं सकता है वैष्णव। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। आल दिवे प्रभुपाद यहां से अमेरिका गए कि वो दुख नहीं देख सकते थे, सफरिंग ह्यूमैनिटी की नहीं देख सकते थे। वैष्णव दूसरे का दुख नहीं देख सकता है। वासुदेव दत्ता कहता है जीवेरा दुख देखी मोए हृदय बिद्रे। अरे जीवों का दुख देख के मेरा हृदय फट रहा है, कलेजा फटा जा रहा है। महाप्रभु मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, जीवों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। सर्व जीवेरा पाप प्रभु देहो मोरे सर। इन सब जीवों के पाप मेरे सर के ऊपर दे दो। मैं इन सब का पाप अपने सर के ऊपर लेने को तैयार हूं, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये महाप्रभु को प्रार्थना कर रहा है वासुदेव दत्ता एक द्वारे का बैठे एकांत में। और आगे क्या कहता है? प्रभु देह मोए सिरे, ये सारों का पाप मेरे सर के ऊपर दे दो। करूं नरक के भोग, मैं जाके नरक में इनका भोग कर लूंगा। पाप का भोग नरक है ना, मैं नरक में जाने को तैयार हूं। करूं नरकेर भोग सकल जीवेर प्रभु गुछे भव रोग। लेकिन इन सब का तो भव रोग मिटाओ, मैं अकेला चला नरक में जाने को तैयार हूं। कितनी बड़ी उदारता है, कितना उत्तम भाव है एक वैष्णव का। भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है कि लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, लोगों का दुख देखना मेरे बहुत पीड़ा होती है। आप एक काम करो, इन सब का दुख मेरे सर के ऊपर रख दो, मैं नरक में जाके भोग लूंगा। लेकिन इन सब विचारों का भव रोग, भव रोग किसके कहते हैं? भव किसको बोलते हैं? जन्म और मृत्यु को। इस संसार का नाम है भव सागर। भव मतलब जहां जन्म मृत्यु होती है, और जो भव को संभालती है उसका नाम है भवानी। दुर्गा भवानी भव सागर की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उसको भवानी बोलते हैं। तो भव सागर से इनको पार करो, इनका सारा पाप मेरे सर के ऊपर धरो। अब महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं? अब महाप्रभु का भाव देखिए। तोरे विचित्र नाही, आप जो ये प्रार्थना कर रहे हैं ना कि सबका दुख मेरे को दे दो पाप, ये तेरे लिए कोई विचित्र, इट इज नॉट एस्टोनिशिंग फॉर यू, इट्स नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर यू, ये तो आपका स्वभाव है। कौन हो आप? महाप्रभु उसका स्वरूप बता रहे हैं। तुम ही साक्षात प्रहलाद। प्रहलाद महाराज ने यही कहा था ना कि आपको प्रार्थना, क्या क्या वर मांगते हो मुझसे? नरसिंहदेव ने पूछा क्या वर चाहिए? बोला लोगों का दुख देखा नहीं जाता, इनका पाप सब मेरे को दे दो, मैं नरक भोग लूंगा, इन सब का उद्धार कर दो। ये हमारी राक्षस कुल है ना सारे, ये हमारा राक्षस कुल है। इस कुल में बहुत सारे दुखी हैं, इन सब का पाप मेरे को देखो, इनका उद्धार कर दो। बोला तुम ही वासुदेव, तुम्ही साक्षात प्रहलाद। विचित्र नहीं, इट इज नॉट एस्टोनिशिंग, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट यू आर आस्किंग दिस। तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर कृष्णेर संपूर्ण प्रसाद। अब ये लाइन महाप्रभु जब कहते हैं कि जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है, समझ लो कि कृष्ण का पूरा प्रसाद या कृपा उस जीव के ऊपर है। कृष्ण का पूरा प्रसाद कृपा, ऑल द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज ऑन द वन हु फील्स पेन इन हिज हार्ट व्हेन ही सी द सफरिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, कहा कृष्ण का प्रेम चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के जाओ पास जाओ। यू नीड कृष्ण प्रेम, यू गो टू द चैतन्य महाप्रभु। यू नीड चैतन्य महाप्रभु प्रेम, यू गो टू नित्यानंद प्रभु। यू नीड नित्यानंद महाप्रभु, यू नीड नित्यानंद मर्सी, गो टू द मोस्ट फॉलन पीपल एंड गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इक्वेशन बताई, दुखी से दुखी लोगों को जाकर, बहुत गिरे हुए लोगों को जाकर भगवत प्रेम का संदेश दो, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करो। नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु की कृपा मिलेगी और महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलेगा। यही फार्मूला, और कोई फार्मूला नहीं। तो जो दूसरे को दुख को, एक जो भगवत गीता में एक श्लोक है, आत्मोपमेयेन सर्वत्र यो मां पश्यति, छठे अध्याय का श्लोक है। अपने से कंपेयर कर, अपने से उपमा देकर, अपने से कंपेयर कर, तुलना कर, जो दूसरे के दुख और सुख को देखता है, जो चीज मुझे सुख दे रही है वो दूसरे को भी सुख देगी, जो मुझे दुख देती है वो दूसरे को भी दुख देगी, जो ये करता है वो सबसे बड़ा योगी है। अर्जुन को भगवान ने जब ये कहा तो अर्जुन ने ऐसे देखा कि आप बात तो बड़ी अच्छी करते हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन दुर्योधन के सुख को मैं मेरा सुख कैसे समझूं? और युधिष्ठिर महाराज को मैं सुखी देखना हूं, दुर्योधन को दुखी देखना चाहता हूं, दुर्योधन को दुखी देख के मुझे सुख होता है, तो ये तो आपका योग मुझसे हो नहीं सकेगा। तब अर्जुन ने एकदम प्रश्न पूछा है, एकदम अर्जुन पूछता है छठे अध्याय में प्रश्न, त्वाम प्रोक्ता योग, जो आपने अभी योग, अयम योग जो अभी आप योग करें ना, सामी है ना, जो आप कहते हैं समान रूप से सबको देखा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अर्जुन कहता नहीं हो सकता है ये, क्यों नहीं हो सकता? बोला ये मन ये बात नहीं मानेगा, हमारा मन ये बात नहीं मानेगा कि मैं दुर्योधन को और युधिष्ठिर को समान समझ लूं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां ये कहता है, उसके भावार्थ में प्रभुपाद जी ने लिखा है, भक्त लोगों को दुखी देखते हैं, उनका दुख देख नहीं सकते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए रिस्क उठा के भगवान का प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद ने लिखा है, वैसे तो भगवान ने कहा है कि अश्रद्धालु लोगों को प्रचार मत करना, जो अश्रद्धालु है उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं, वो बहुत बड़ा जोखिम और रिस्क उठा के उन लोगों को भी जाकर प्रचार करते। एक रोज हम सुबह मंगल आरती में एक सांग एक एक कपलेट पढ़ते हैं, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, गुरु भगवान के समान है सब शास्त्र कहते हैं। किस बात में भगवान के समान है गुरु, ये प्रश्न पूछना चाहिए ना। भगवान तो षडगुण संपन्न है, छह गुण संपन्न है, ऑल सिक्स अपीयरेंसेस अनलिमिटेड भगवान में, तो गुरु किस बात में भगवान के समान है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, साक्षात सब शास्त्र कहते हैं गुरु भगवान के समान, किस बात में? आपको माना हिज डिवाइन ग्रेस का हिंदी में अनुवाद क्या करते हैं लिखा है, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति मीन्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मर्सी ऑफ श्री कृष्ण, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मर्सी ऑफ श्री कृष्ण। तो भगवान के समान क्या, भगवान से भी ज्यादा गुरु है कृपा बांटने में, दया करने में। और ये भक्ति देने की एजेंसी भगवान ने भक्तों को दे दी है, अपने पास नहीं रखी है।
अगर भगवान एक को भक्ति दे और दूसरे को नहीं दे तो पक्षपात हो जाएगा ना, तो पार्शलिटी हो जाएगी ना, तो लोग कहेंगे एक को भक्ति देता है एक को नहीं देता है। इसलिए भगवान ने ये एजेंसी भक्तों को दे दी है, जिसको चाहे उसको दो, मेरे ऊपर कोई नहीं कहे, भक्तों ने दिए मैं क्या करूं। तो भक्त दयालु है भगवान से भी ज्यादा, उसको सोल राइट है, वो किसको भक्ति दे सकते हैं, किसी को भी भक्ति दे सकता है। अब देखिए क्या कहते हैं महाप्रभु उत्तर में, तुम ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर कृष्ण ने संपूर्ण प्रसाद, तेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों को दुख देख नहीं सकते हो, उनका दुख अपने सर के ऊपर उठाने के लिए तैयार हो। और तब आगे देखिए क्या कहते हैं, अब महाप्रभु सिद्धांत बता रहे हैं, कृष्ण से ही सत्य करे ये मांगे भृत्य, कृष्ण से ही सत्य करे ये मांगे भृत्य, भृत्य का मतलब दास, सर्वंट, भक्त, जो मांगता है कृष्ण वो सत्य करता है। भक्त जाके कृष्ण को कुछ कहेगा कि ये भक्त आपका सेवा करता है इसको ले लो, हम क्या कहते हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी कृष्ण को जाके बोलती है, इधर देखो तो बांसुरी बजाना बंद करो, एक मिनट सुनो तो क्या हुआ, बोलो ओ देखो हरे कृष्णा जप रहा है ना, इसको अपना भक्त बना लो। और कृष्ण कहता आपने कह दिया, एंट्री हो गई, बस ये हो गया हमारा भक्त, एनरोलमेंट नंबर इसको दे दो है? बोला ये पढ़ा लिखा नहीं, बोला कोई बात नहीं, एनरोलमेंट मिल गई, एक दिन तैयार हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में पहले दिन जो स्टूडेंट एडमिट होता है उस दिन बाहर पूछते हैं कि आज स्टूडेंट कितने यूनिवर्सिटी में, तो उसका नंबर भी उसमें आता है कि 500 स्टूडेंट पूरे हैं। अरे ये आज एडमिट हुआ, इसको कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख लेगा, एडमिशन तो हो गई ना। तो केवल इतना कहने की जरूरत है। तो अब कहते हैं महाप्रभु, कृष्ण से ही सत्य करे ये मांगे भृत्य, जो दास मांगता है, जो सेवक मांगता है, जो सर्वेंट मांगता है, जो भक्त मांगता है, वो कृष्ण सत्य करता है। अब एक और बात सिद्धांत कह रहे हैं, क्या कहते हैं, भृत्य वांछा पूर्ति करे बिना ना ही अन्य कृत्य, कृष्ण के बाद और कोई काम ही नहीं है, एक ही काम है उसका। बोलो क्या? बोलो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए दुकान खोल के बैठा हुआ है, कब आएगा, क्या एप्लीकेशन लाएगा। और बोलते हैं सबसे ज्यादा किसकी इच्छा करता है पूरी मालूम है? नारद की, बड़ा भक्त है ना, जिसके लिए नारद ने कहेगा ये मृगारी को भक्त बना लो, बोला ठीक है, बोला ये वाल्मीकि चोर है इसको भक्त बना लो, बोला ओके। तो इसलिए नारद का अर्थ क्या होता है, जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती है, एक बार एप्लीकेशन डालो नारद, कभी रद्द नहीं होगी। इजी डेफिनेशन है नारद की, तो जो भक्त भक्त की एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं होती है। ये क्या, भृत्य वांछा पूर्ति बिना नाही अन्य कृत, भृत्य वांछा पूर्ति कर, अपने सेवक की अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के अलावा और कोई काम कृष्ण के पास है ही नहीं, पर पूरा समय सिर्फ इंतजार करता है कि भक्त कभी किसी की सिफारिश लेके आता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इसका कुछ ऐसे करना चाहिए, बेचारे को घूम जाता है, ये माहिक कहता है मेरी सिफारिश करो। कहता है कब से मैं यहां, बाकी कोई सत्संग सुने ना सुने लेकिन पहला आवाज मेरे अंदर आता है, मेरा कब उद्धार होगा। इसका उद्धार मुश्किल है इस जन्म में। अरे कृष्णा, एक दिन एक ट्री है वृंदावन में, वृक्ष है कदम का, कदम है ना, राधा श्याम सुंदर के बीच में अल्टर के सामने, किसी ने कहा हम कभी जाते हैं आरती मंगल में, कभी संध्या आरती में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन जब से डीटी इंस्टॉल हुई है तब से ये वृक्ष सब आरतियों को अटेंड कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली ये जीव है कि उसको भगवान का दर्शन पट खुलते ही पहले होता है। तो वृंदावन में कई वृक्ष हैं जो बहुत बड़े महात्मा हैं, केवल वृक्ष में बैठ के भगवान के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। उद्धव तो लता पता के रूप में रहते ही हैं, लेकिन एक हमारे मित्र संत है उसके पास हम जाते हैं, उनकी कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में छत थोड़ी टेढ़ी है। हमने पूछा ये छत टेढ़ी क्यों है, बोले जब छत बना रहे थे तो बेर का पेड़ था उसको काटना था। बाबा रात को सोया था, ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहता है बाबा मैं ब्राह्मण हूं, यहां बेर के पेड़ के रूप में रह के भगवान की लीला का रस आस्वादन करता हूं, मेरे को काटना मत। इसलिए उस बेर के पेड़ को काटा नहीं है, इसलिए छत थोड़ी टेढ़ी बना दी। तो वृंदावन के वृक्ष भी इतने बड़े दयालु है, इसलिए कहते, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहता है, अरे मेरा ऐसा भाग हो कि वृंदावन की सीमा के ऊपर, सीमा मतलब बॉर्डर के ऊपर, अगर घास में बन जाऊं ना और आते जाते भक्तों के चरणों की रज मिलेगी तो भी मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी की आशा है, ब्रह्मा जी इज एस्पायरिंग दिस थिंग कि ब्रज का वृक्ष भी किसी को छू ले तो भगवान कहता उसकी भी मैं इच्छा पूरी कर लेता हूं, वृक्ष की भी इच्छा पूरी कर लेता हूं, आदमी तो दूर की बात है। और भगवान इतने दयालु हैं, किस कहा मैंने कहा था ये। अब आगे महाप्रभु क्या कहते हैं, आपने क्या क्या वासुदेव जी, आप उनका सारा पाप ले लेंगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा तब इनका उद्धार होगा। अब जितना महाप्रभु कहते हैं असमर्थ नहीं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही इज नॉट इनकैपेबल, असमर्थ नहीं है, असमर्थ नहीं कृष्ण, धरे सर्व बल, वो तो सर्वशक्तिशाली, वो असमर्थ नहीं है। तुम्हारे की भुजित पाप फल, दूसरों का पाप तुम्हारे ऊपर क्यों डालेगा, क्या कृष्ण असमर्थ है, उसमें बल नहीं है कि सबका पाप तुम लोगे तो तुम्हारे को दे देगा। तुम्हें मालूम है कृष्ण कैसे उनका उद्धार करेगा, तुमको नरक में नहीं डालेगा, क्या करेगा, बोला तुम वैष्णव हो ना, तुम्ही यहां हित वांचा, तुम जिसका हित करना चाहते हो ना, तुम्हारे मन में आ जाए भगवान के सामने खड़े होके कहो ये मेरा पिताजी है अभी तक आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा है, ये मेरा मित्र अभी आपकी भक्ति नहीं कर रहा है, मैं देखा हूं बहुत दुखी है, तुम उसके हित के लिए केवल सोचो, सही है ला वैष्णव, वो वैष्णव बन जाएगा। तुम भगवान के सामने उसके हित के लिए केवल सोचो वासुदेव, जस्ट सिंपली थिंक ऑफ हिज वेल बींग, थिंक ऑफ हिज mitigation of the suffering, just you think about that and he will become Vaishno immediately, वो Vaishno हो जाएगा। और फिर वैष्णवर पाप कृष्ण दूरी करे सब, जैसे वो Vaishno हो जाएगा कृष्ण उसके ही पाप दूर करेगा, तुम्हारे ऊपर क्यों पाप का फल धरेगा, कृष्ण तो आपके ऊपर पाप का फल क्यों धरेगा, वो तो सारा उसका फल एकदम नाश कर देगा। और भगवत गीता में भगवान ने क्या कह दिया, यथाई धान सो अग्नि भसम सात कुरुते, जैसे अग्नि सारे पाप भसम कर देती है, जैसे अग्नि सारी लकड़ियां सुविधाएं भसम करती है, ऐसे पाप सारे नाश हो जाते हैं, एक क्षण में नाश हो जाते हैं पाप, किसके, जो भगवान के। ये कहां से श्लोक शुरू होता है मालूम है, कहां से शुरू होता है, तद विधि प्रणिपाते न परिपर्शने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शन, यहां से शुरू होता है। और फिर कहता है ये ज्ञान कैसा है, बोला ये ज्ञान ऐसा है कि जैसे लकड़ी सारी जला के अग्नि नाश करती है, ऐसे सारे पाप नाश कर देता है। अपिचेत स पापे भ्यो पाप कृतम मह, पापियों में महापापी हो, हजार पापी छांट के उसमें से दस निकालो और दस में से एक निकालो, ऐसा भी कोई बड़ा पापी हो तो भी अगर इस ज्ञान की नाव में चढ़ जाएगा, कौन सा ज्ञान, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये यहां भी एक शब्द आता है ज्ञान, और फिर ये शब्द चौदहवें अध्याय में ज्ञान आएगा, मैं ऐसा आपको ज्ञान दिया हूं जो पहले कभी नहीं दिया है। और इस ज्ञान को जिसने भी अध्ययन किया है, बहुत से पहले भी परम गतपति को प्राप्त किए, वो कौन सा ज्ञान है? अविभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतितान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ज्ञान है। ये ज्ञान का लक्षण है 14वें अध्याय में। और अमानितम वाले श्लोक में ज्ञान का लक्षण है अविभिचारेण भक्ति योगेन, इसको ज्ञान कहते हैं। जो भगवान का भक्त है और भक्ति करता है अविभिचारिणी, वो केवल इच्छा कर ले किसी के हित की, तो भगवान श्री कृष्ण उसको वैष्णव बना के उसके सारे पाप नाश कर देता है। इसलिए बहुत से भक्त कभी कहते हैं, प्रभु जी हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे बहुत भगवान का भजन नहीं करते हैं, उसको प्रचार नहीं करो, भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान इसका उद्धार हो जाए और वो एकदम वैष्णव बन जाएगा। ये महाप्रभु के वचन है। प्रचार से ज्यादा प्रार्थना आपकी उसका भला करेगी। तुम्ही यार हित वांचे, वासुदेव आप जैसा भक्त जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, ये वैष्णव का लक्षण है। दूसरे का दुख देख नहीं सकता है, हमको देखना अपने अंदर जाकर देखना चाहिए कि हम दूसरे का दुख देख सकते हैं का। दूसरे का दुख का मतलब ये है कि मानो यहां सत्संग में आना है, अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो आपको दुखी होकर उसके घर से जाके लाना चाहिए, भाई तुम जाओ, चलो तुम यहां कहां बैठे हो, दुखी हो रहे हो ना, चलो वापस जाओ, जहां सुख और आनंद भगवान के नाम और कीर्तन का बट रहा है उसको छोड़ के तुम घर में क्यों बैठे हुए। तुम्हारे मन में ऐसे भाव आना चाहिए, अरे आज मेरा मित्र आया नहीं, सुख से वंचित हो गया, आप एक फोन तो करके उसको बुलाने का प्रयास कर लो। यही भक्त संघ का बहुत बड़े से बड़ा लाभ है कि वो आपको गिरने से बचा देगा, वो आपको दुखी देख नहीं सकता है। तो भक्त दूसरों का दुख देख नहीं सकता है, इसी को बोलते हैं भक्त के हृदय बहुत कोमल होता है, इतना नरम हृदय होता है किसी का दुख देख नहीं सकता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, करुणा है। और भगवत गीता के पहले अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन का ये जो उनके मृत्यु के दुख के कारण द्रवित होना अर्जुन को क्वालिफाई करता है गीता का ज्ञान लेने के लिए, कि अर्जुन भक्त ऐसा है जो दूसरों के दुख को देख नहीं सकता है। और जो ऐसा भक्त होता है उसके हृदय में भगवान का ज्ञान अपने आप प्रवेश करता है और वो भक्त दूसरों का उद्धार कर सकता है। तो हमारे को निश्चित रूप से दूसरों के उद्धार करने के लिए भगवान का ये संदेश चेतना महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन, हम सब चेतना महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के सिपाही है, वी आर द सोल्जर ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट। और उसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का प्रचार करना है, और वो मीठी गोलियों के द्वारा होता है। और प्रभुपाद ने प्रचार केवल दो ही चीजों से किया, और उनकी एक मीठी गोली कौन सी थी? गुलाब जामुन। ये संकीर्तन पहली आर्मी है संसार के अंदर जो बंदूक की गोली नहीं, गुलाब जामुन की गोली से, गुलाब जामुन की गोली से लोगों का दुख दूर करती है और माया रूपी शत्रु के ऊपर आक्रमण करती है। एक तो हमारा हथियार ये है, और दूसरा हमारा दूसरा वेपन कौन सा है? मृदंग और करताल। दो चीजें, मृदंग और करताल और गुलाब जामुन, ये दो अगर आपके पास है, यू कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। दिस वॉज प्रभुपाद रियलाइजेशन। पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए प्रभुपाद ने कहा, आई हैव स्प्रेड दिस मूवमेंट बाय सिंपली टू थिंग्स, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा मेलोडियसली एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। ये दो संकीर्तन आर्मी के हथियार हैं। आर्म विथ योगा एंड फाइट, कृष्ण ने ये नहीं कहा आर्म विथ हथियार, आर्म विथ योगा एंड फाइट। मुझसे जुड़कर, मुझसे जुड़कर मतलब हरे कृष्ण मंत्र से जुड़कर, या कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतार है, तो कृष्ण नाम से जुड़कर योग में, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, और भगवान से जुड़ना, और भगवान कहां है, बोले भगवान अपने नाम में। सो कृष्ण नाम में जुड़कर अपना जप ठीक करो, संकीर्तन ठीक करो, और फिर इसका आवाज कोई कीट पतंग भी सुनेगा ना, चींटी भी सुनेगी ना, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। दुख तो हर एक छोटे से छोटे के दुख को भी दुख समझना चाहिए, ये भाव मन में कर ये काम। महाप्रभु की अभी तक बहुत काम रह गया, लोग कहते हैं बहुत, अब कहां हम क्या करें प्रचार, कहां करने जाना है। महाप्रभु ने क्या है कहा, क्या कहा है, भविष्यवाणी क्या है, पृथ्वी ते आचे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र हो, तो अभी तो पृथ्वी में बहुत सारे गांव रहते हैं, बहुत सारे मोहल्ले पड़े हैं, और हम सबके लिए मोर देन इनफ स्कोप है, मोर देन इनफ स्कोप है। और सब जगह प्रभुपाद को एक बार पूछा था पत्रकार ने, अमेरिका में प्रभुपाद गए थे, अभी गए को मानो 6 महीने भी नहीं हुए थे, और एक पत्रकार आया, पूछा आपके कितने मंदिर है, आपके कितने शिष्य, बोला हमारे सैकड़ों मंदिर है, हमारे हजारों शिष्य है। से बोला कहां है, बोला ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, केवल समय के बीच में दूरी है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपको नहीं दिख रहे। तो हर जगह पहले से ही महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, लेकिन आपको केवल खड़ताल जाके वहां बजानी है और गुलाब जामुन बांटना है। भक्त तो पहले से वहां महाप्रभु ने भेज दिए। आपने मेमोरीज में एक पढ़ा है प्रभुपाद श्री नाथ जी नरेंद्र डिसाई के घर पे, उसके पिता उस वक्त में एमएलए थे, और प्रभुपाद ने कहा ये छोटा ये जो लड़का देख रहे हो, ऐसे इशारा कि ये जो लड़का देख रहे हो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि है, आप कृपा करके इसको भारत की नागरिकता दिलाओ। और वो लड़का जयपिता का स्वामी महाराज था। ही पर्सनली सेड एट दैट टाइम कि ये लड़का देख रहे हो ना, ये चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधि है, इसको भारत की नागरिकता दिलाओ। And then decide work on that at that time. It memory के किताब में छोड़े कितने, हाँ, प्रतिमिन में से representative. I mean, he has left. Mahaprabhu has sent his all the representative all over the world to spread the movement somewhere. So आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप गुलाब जामुन बनाना सीख लो और मृदंग बनाना सीख लो, प्रचार अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, so simple. और कोई ऐसा आदमी जिसको खाना नहीं आता हो, गाना और खाना सबको आता है। एक बार एक मेरे को आदमी मिला, बोला मैं पुणे गया था, मतलब क्यों, बोला एक बहुत कोर्स करने गया था योगा का, मतलब पैसा कितना था, बोला 4,000 रुपया, मतलब सिखाया के क्या, बोला 2 दिन रोना सिखाया, 3 दिन हंसना सिखाया। मैंने बोला मैं 2 थप्पड़ मारूंगा तो 4 दिन रोता रहेगा, पैसे क्यों खर्च करता, यही कोई सीखने की बात है। जन्म लिया उस वक्त से रोना शुरू किया, अभी तक तो रोते हुए आ रहे, रोने के भी 4,000 कोई देने की जगह, लोग पागल है क्या? और अभी आप हंस रहे हैं, कुछ देना पड़ रहा है क्या, जब मुफ्त में हंस सकते हैं तो पैसा काहे के लिए खर्च करना। ये तो प्रभुपाद का बुद्धि वे प्रभुपाद जी उससे लोग पैसा, आप पैसा दे के नाचने के लिए जाते हो ना क्लब में, और पैसा दे के प्रसाद खाते हो ना, भोजन करते हो ना, आओ मुफ्त में नाचो, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, ये आपका योग हो जाएगा, वो आपका भोग है, उससे रोग हो जाएगा और इससे भगवान का भजन हो जाएगा। तो ये रोग है वो और वो भोग है, काम तो दोनों एक जैसे है, वहां भी नाचना है लेकिन घर का पैसा दे के नाचना है और बीमारी को साथ में लाना है। तो वो और रोग है, वो भोग रोग की तरफ जाएगा और ये भगवान को लगा हुआ भोग योग हो जाएगा। तो ये सरल सा मास, बहुत सरल है, घर घर में जाके ये संदेश दे दो, जिसको भी पड़ोस अड़ोस में जानते हो, बोलो मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, पहले पूछना आपका हाल कैसा है, और आज दुबई में जिससे पूछो हाल कैसा, बहुत दुखी, बड़ी पीड़ा है, बोला आप दुखी है यही तो मैं देख नहीं सकता हूं, बस आप ये गुलाब जामुन एक खा लो और हरे कृष्णा जप लेना, ठीक है ना, बस आप समझ लो आपका काम हो गया। इस वो सो सिंपल, ये वासुदेव दत्ता का मूड है, महाप्रभु का आदेश है, और अब आपको और हमको ये काम पूरे विश्व में करना है। हरे कृष्णा, अभी की कथा को यहां समाप्त करते हैं, ठीक है प्रभु? द नेक्स्ट सेशन हैज टू स्टार्ट. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच.
खिलाते हैं लोग जगह ही सही. Thank you. Thank you. Thank you.
राघव राम राघव
कृष्ण भगवान की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चैतन्या हरे कृष्णा जब छोटे बच्चे होते हैं तो भगवान का भक्त बनना बहुत आसान है, उसको बोलते हैं हरे कृष्णा, वो बोलता है हरे कृष्णा, कुछ मुश्किल नहीं। जितने बड़े होंगे उतना बनाना मुश्किल है भक्त। पता है प्रभुपाद ने क्या कहा, कल युग में किसी आदमी को हरे कृष्ण नाम जपाने का कितनी मेहनत करनी पड़ती है, घोड़े को दवा पिलाने जितनी। बोलो घोड़े को दवा पिलाने के लिए 6 आदमी चाहिए, 4 पांव पकड़ेंगे, 1 मुंह खोलेगा और 6ठा आदमी दवाई डालेगा। तो कल युग में भगवान का नाम जपाना बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटे बच्चों को भगवान का नाम अभी से सिखा दो। ये घूमे कूदे नाचे डिस्टर्ब करें, लेकिन बहुत अच्छा है कि मंदिर के अंदर कर रहे हैं। ये जो भी यहां कर रहे हैं ये सुकृति इनकी है। कभी कभी लोग कहते हैं, एक महात्मा था, कथा में कोई बच्चे शोर कर रहे थे, आधा घंटा सत्संग सुनने के बाद गए, माता जी इस बच्चे को समझाओ ना। माता जी बहुत कोई होशियार थी, बोला महाराज 1 घंटे से आप हमारा सर खा रहे हैं, चुप करके बैठे हैं, क्या बच्चा 2 मिनट रो रहा है, इतनी मुश्किल था आपको क्या कौन सी पड़ी। बस अब जहाँ बच्चे बैठे हैं उसको, जो बच्चे हैं वही बच्चे हैं, बाकी सब खराब हो गए हैं। सो आइए 15 से 20 मिनट तक चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता दी किसके लिए है, देने का उद्देश्य क्या था। बच्चे लोग हाथ जोड़ लीजिए, बच्चे लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मेरे पीछे बहुत प्रेम से दोहराइए, श्रद्धा से दोहराइए, देखिए कि हृदय में भगवान दिखता है कि नहीं दिखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान देने का उद्देश्य क्या था, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय के 1 श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। भगवान 10वें अध्याय के 1 श्लोक में क्या कहते हैं, श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो श्रणो में परमम वच। भूय का मतलब है दोबारा, प्लीज लिसन अगेन। आप किसको बार बार बताना पसंद करते हो, जीवन में देख लो, ध्यान से सुन लेना, एक बार और सुन लो, समझे ना, किसको कहते हो वैसे आप घर में, योर ओन वेरी डियर एंड नियर वंस। बच्चा अपना पहली बार स्कूल जाता है, कितना समझाते हो, किताब ठीक ले जाना, बैग ठीक है ना, समझे मैंने क्या कहा, गाड़ी में चढ़ते हुए ध्यान रखना, कितना ध्यान से उसको कितनी बार समझाने का प्रयास करते हो, हाउ मेनी टाइम्स यू टेल हिम, भूया एव श्रुणो मे परमम वचन, परम वचन मेरे परम वचन एक बार और सुन लो अर्जुन। अर्जुन क्यों भाई क्यों, बच्चे से कहते क्यों दोबारा क्यों कहते हो, क्या बात है, भूय एव महाबाहो श्रुणो मे परम वचन यत यत ते अहम प्रियमाणाय, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम्हें दोबारा बताना चाहता हूं। मास्टर जी स्कूल में एक दफा पढ़ाते हैं, उसको बोलो दोबारा पढ़ाओ, बोलो ट्यूशन दोगे तो पढ़ाऊंगा। ये डिफरेंस है। पिताजी को 100 बार पूछे, एक बार पिताजी बूढ़ा हो गया था, बेटे ने पूछा ये क्या है, कोई नई चीज लाया मानो आजकल का कोई कंप्यूटर लाया, बेटे बोला पापा ये क्या है, बोला कंप्यूटर है, बोले क्या होता है, बोला बार बार क्यों मां सर खाते हो। बाप ने बोला बेटा तुम जब इतना छोटा था एक चीज को 100 बार पूछता था और मैं 100 बार तुम्हें बताता था, आज तुम 2 बार बताने में तुम्हें तकलीफ हो रही। बेटे कितनी बार आप बच्चों को एक एक चीज प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्यों देते हैं, भगवान कहते हैं बार बार सुनू, क्यों सुनाता हूं मैं, प्रियमाण आय मैं तुमसे प्रिय प्रेम करता हूं। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बताई, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। या आप प्रेम करते हो तो ठीक है, कोई और कोई कोई काम कर लो, ये बार बार गीता क्यों बता रहे हो, तब हित कामया, तुम्हारे हित की कामना है मेरी, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपको इसलिए गीता बता रहा हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। हाँ फिर 18 अध्याय में कहें इष्टोसी में दृढ़मिति वक्ष्यामि तव हित कामया, आप मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे हित की कामना है, इसलिए मैं आपको दोबारा ये बताने जा रहा हूं। देख लो भगवान को हमारी चिंता ज्यादा है, हमारे को तो भगवान का चिंतन करने का टाइम नहीं है, लेकिन भगवान को कितनी चिंता है। तो अर्जुन ने कहा भाई आप ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते हैं, मानो अर्जुन कहता है, तो भगवान कहते हैं न मे विदु सुरगणा, मुझे देवता नहीं जानते हैं। आप नहीं मतलब समझो कि हम किसी मंदिर में चले जाएंगे और हम पूछेंगे भगवान क्या है तो वो आपको देवता बता देंगे, उनको मालूम नहीं है मैं कौन हूं। न मे विदु सुरगणा, देवता मुझे नहीं जानते हैं। अर्जुन का कोई बात नहीं जानते, हो सकता है स्वर्ग के अंदर बैठे हैं, बड़ा सुख है उधर, उनको याद नहीं होता है, तो ऋषि मुनियों के पास जाता हूं, उनको तो मालूम है ना, वो आपको जाए नमे विदु ऋषि नमिदे नमे विदु सुरगणा न महर्षि, मुझे महर्षि भी नहीं जानते। तो फिर भगवान को जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, देवताओं को पता नहीं है, फिर सब देवताओं के मंदिर में घूम के आ जाएंगे तो फिर हमारे को मिलेगा, भगवान का तो पता नहीं मिलेगा, नहीं उनको भी पता नहीं है तो हमारे को बताएंगे कहां से। बहुत ठीक तरह से समझ लो, भगवत गीता के शब्द हैं, भगवान के मुख की वाणी है, कहते हैं देवताओं को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं, और महर्षियों को भी ऋषियों को भी मालूम नहीं है, महर्षियों को भी मालूम नहीं है। अर्जुन बोला क्यों उनको मालूम क्यों नहीं है, बोला अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च परंतपा, देवताओं का और महर्षियों का आदि मैं हूं, मैंने उनको पैदा किया, वो मेरे को कैसे जानेंगे। बेटा उठ के कहे कि मैं बाप के बारे में सब कुछ जानता हूं तो हम मान सकते हैं, लेकिन पूछेंगे कि बेटा तुम तेरे बाप की शादी में गए थे क्या, तो उसको मालूम होता है क्या, बेटे को बाप की शादी का पता होता है, नहीं हो सकता है ना, कि पैदा ही नहीं होता तो पता कहां से होगा। तो ये देवता और महर्षि पैदा ही मैंने किए हैं तो इनको क्या पता मैं कौन हूं। अब भगवान स्वयं अपने लिए बता रहे हैं सुन लो मैं कौन हूं, भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, ये मुझसे सुन लो, क्यों सुने, बोला मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए सुन लो। आप प्रेम क्यों करते हैं, बोला हम आपका हित चाहते हैं, भगवान हमारा हित चाह रहे हैं, हमसे प्रेम कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बार बात बात सुन लो। बोला क्या बताने जाता हूं, गोह्यत्मम परम गुह्य, बहुत गोपनीय बात आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा कौन सा रहस्य भगवान बताने जा रहा हूं। बोला पहले किसी को नहीं बता रहा, आपको बता रहा हूं अभी, तो बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। मानो भगवान कितना प्रेम से स्नेह से हमारा हित करने के लिए भगवद गीता बताने का, आप समझते हैं गीता कोई साधारण शास्त्र नहीं है, शास्त्र कहां लिखा जाता है, आपको कुछ कोई कहे कि आप कुछ एक दो पेज का हमको ऐसे लिख के दो तो आपको आप क्या करोगे, कमरा बंद करके अंदर बैठोगे, मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं बैठ के अभी ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे करोगे ना। ये भगवत गीता भगवान कहां बोल रहे हैं, शंख बज रहे हैं, एक तरफ से लड़ाई की तैयारी हो रही है, उसके बीच में बैठकर भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कोई सोच सकता है क्या? ये वेद का ज्ञान है, बहुत बड़ा आश्चर्य। पहला शब्द प्रभुपाद जी ने लिखा क्या है इंट्रोडक्शन में, गीता इज आल्सो कॉल्ड गीतो उपनिषद। क्यों ऐसे लिखा है? इसलिए लिखा है कि उपनिषद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन गीता पढ़ने का अधिकार सबको है। उपनिषद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, उपनिषद तो अरण्य ज्ञान है। जब गुरु के पास जाके जंगल में बैठोगे, जहां रण नहीं हो, जहां लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, शांति हो, वहां आपको अरण्य ज्ञान मिलेगा, और अधिकारी होगा तो मिलेगा। और बोला इधर मैं रणभूमि के अंदर दे रहा हूं, देखो ये बहुत बड़ी क्रांति है। और अर्जुन की तरफ एक मिनट के देख लिए, देख लो कि जिस व्यक्ति को मालूम है कि सामने ये सब महारथी खड़े हैं और तैयार खड़े हैं युद्ध के लिए, और किसी वक्त भी कहीं से बाण चल सकता है, उसके बीच में फुल कंसंट्रेशन के साथ गीता को सुना है, कितना उसका सेल्फ कंट्रोल होगा अपने ऊपर विचार करके देख लो। तो यहां से बस एक बात सीखने की है भगवत गीता की, इससे एक बात आप जीवन में सीख लो कि अर्जुन ने यह कहा होता कि भगवान जहां लड़ाई के मैदान को छोड़ो, चलते हैं कहीं एकांत में, वन में, आप मैं बैठ जाऊंगा, आप मेरे को बैठ के गीता बताना, ये बात नहीं हुई है। उस कैसी भी परिस्थिति है उसके बीच में गीता को अर्जुन ने समझाए, बहुत विषम परिस्थिति में समझाए। और हम ये हमने थोड़े दिन पहले कहीं बैठा था, ये अनुभव किया कि बच्चे देखो शोर करते हैं, कहीं किसी का फोन आता है घर में, कहीं कोई दुकान की बात होती है, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम कैसे भगवान का नाम ले। अरे अर्जुन से ज्यादा तुम डिस्टर्ब हो गया का, अरे वहां मरने मरनाने की बात हो रही, तुम्हारे घर में तो कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है, कौन सी परेशानी आपको है? इसलिए गीता का यह संदेश है कि जिस हालत में हो, जहां खड़े हो, वहां से गीता को समझ सकते हो। तो मैं इसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, न घर छोड़ने की जरूरत है, न दुकान बंद करने की जरूरत है, न परिवार छोड़ने की जरूरत है, जहां हो। गीता का ज्ञान भगवान सन्यासी को दिया है क्या, जो घर बार छोड़ के आया उसको दिया है क्या, कि किसी ब्राह्मण को दिया है क्या जो घंटी बजाता रहो, उसको नहीं दिया ना, सन्यासी को भी नहीं दिया है, ब्राह्मण को भी नहीं दिया है, एक क्षत्रिय को दिया है और एक ग्रस्त को दिया है। तो गीता का ज्ञान का अधिकारी भगवान ने सबको बना के ये एक एग्जाम्पल दिया कि गीता को कोई भी कभी भी कहीं भी कैसी भी अवस्था में हो, कितना भी डिस्टर्बेंस हो, अरे ये डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए तो गीता दी जाती है, और आप कहते डिस्टर्बेंस है इसलिए गीता पढ़ते नहीं। एक आदमी ने कहा कि स्नान करने से सुबह सवेरे अगर कोई बाथ टेकिंग बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग स्नान कोई करेगा तो एक्चुअली पानी ऊपर से गिरता है ना शावर से, वो शरीर में बिजली पैदा होती है, मीन्स जस्ट करंट है, और आदमी एकदम अलर्ट हो जाता है, तो उसकी लेजीनेस चली जाती है, और लोग प्राय स्नान करने में ही लेजी होते हैं। जिस चीज से लेजीनेस जाती है वही चीज करने में लेजी, वो जो आपकी परेशानी दूर करेगी गीता, बोलते हैं ये परेशानी के बीच में इसको पढ़े, यही तो दूर करेगी, तो इसी को क्यों नहीं पढ़ लेते हो? जब इतनी बड़ी विषम समस्या के अंदर अर्जुन के सारी समस्या का समाधान हो गया सवा घंटे के अंदर, और आपकी उम्र के 50 साल पूरे हुए, अभी तक आपकी समस्या जू की तू पढ़िए क्यों? सवा घंटा लगा था भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने में, और अर्जुन ने आखिरी लाइन कह दी, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। 11वें अध्याय में थोड़ी देर के लिए अर्जुन ने कहा, विगतो मोह तव प्रसादात मया अनुग्रह, आपने बड़ी कृपा की मेरा मोह चला गया है। भगवान ने कहा चला गया वापस आएगा तो, अभी मैं मोह आपसे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यह चला गया है ना थोड़ी देर के लिए, जब तक नाश होगा तब तक मैं आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। एक सिटिंग में, इन वन सिटिंग ओनली, इन वन सिटिंग कृष्णा इज कन्विंस्ड अर्जुन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी परफेक्टली। और हमारा डेंटल सर्जन 7 सिटिंग हुई, अभी तक फिलिंग पूरी नहीं हुई है। मैं एग्जाम्पल देता हूं सिर्फ आपको, वो गीता का ज्ञान पूरा कर दिया अर्जुन ने, सब काम करने की तैयारी। इस दुनिया के हम अंदर हमारे से एक छोटा सा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। सिंपली कितना आसान काम भगवान ने गीता के अंदर कर दिया, यत करोसी, जो करना है वो करो, यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद यत, बस ये कौन थे, तद कुरुष्व मद अर्पण, कह दो कृष्ण अर्पण, बस हो गया। बोला कुछ अशुभ हो गया तो, अशुभ हो गया तो इनाश पे, ओ शुभाशुभ परित्यागी, अरे जो शुभ हो अशुभ हो तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास आएगा ना, जहां अशुभ भी शुभ हो जाएगा तुम उसकी चिंता, तुम करो तो सही, जस्ट स्टार्ट इट। तो भगवत गीता भगवान ने हमसे बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं इसलिए दिए, ही लव्स अस, ही केयर्स फॉर अस, ही वांट अस टू बी इन सेफ सिचुएशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वेयर देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप, जहां कदम कदम के ऊपर खतरा है, उसके बीच में गीता के ज्ञान से भगवान हमारे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ये सुरक्षा सब लोग साथ नहीं होते हैं, कहीं हमने दो चार दिन से ये बात करते आ रहे हैं, फिर भी हम हाथ जोड़ के सबको कहते हैं, जैसे आपके बच्चों के लिए हर समझदार माँ बाप अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन के लिए अस्पताल ले जाता है कि इसको बीमारी ना हो, ऐसे हर समझदार माँ बाप को बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए गीता शास्त्र की स्टडी का इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए। जो ये नहीं कराता है वो बड़ी मूर्खता कर रहा है। बच्चों का भविष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी सारी जिंदगी की कमाई आप बच्चों के ऊपर लगाना चाहते हैं और बच्चों को बिगड़ने से बचाना है, तो ये शास्त्र का ज्ञान उसको जब इतने छोटे हैं तब दे दो। और इस काम करने के लिए यहां आप लोग जितने बैठे हैं इसमें से 50 ऐसे लग गए माता जी, 5-7-10 हैं जो अपने घर में बच्चों को गीता के श्लोक सिखाती हैं। और जो बच्चा एक बार गीता का श्लोक पढ़ेगा उसको उसका अर्थ नहीं भी आएगा तो भगवान को मालूम है कि ये मेरा श्लोक पढ़ रहा है। बच्चे को अर्थ नहीं आता लेकिन भगवान को तो अर्थ आता है कि मेरा नाम ले रहा है, और वो बच्चा ये समझ लो कि कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड है। किससे इम्यूनाइज्ड है? इस दुनिया के सब दुखों से इम्यूनाइज्ड है, वो सुरक्षित है, उसको कवच आपने पहना लिया है। वो बच्चा आपका आज्ञाकारी बनेगा और वो बच्चा भगवान का भक्त बनेगा और हजारों लोगों का संसार में उद्धार करेगा। इन छोटे बच्चों को अभी से भगवत गीता की शिक्षा के लिए जहां ये शिक्षा दी जा रही है इन भक्तों के द्वारा, वहां भेज के आप उन बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए। ऐसा मौका गंवाइए मत, ये फ्री सेवा, ये सब फ्री सेवा कर रहे हैं भक्त। इज इट सो? एट मेनी प्लेसेस वी आर डूइंग इट, एंड दिस इज व्हाट द मूड ऑफ कृष्णा इज, दैट वी लव, हम प्रेम करते हैं मानव जाति से। क्यों करते हैं? क्योंकि सब कृष्ण के अंश से। भगवान कहता है ममैव अंश जीव लोके, सब भगवान की संतान है तो सब हम आपस में भाई हैं, बिकॉज गॉड वन इज अवर फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, तो भगवान एक है। तो इससे पहले वाले सत्संग में यही कहे कि दूसरों का दुख देखने से वैष्णव को बहुत पीड़ा होती है, साधु दूसरे का दुख देख नहीं सकता है। बच्चों को कॉलेज के बाहर सिगरेट पीते हुए और बार के अंदर शराब पीते हुए और नवयुवत लड़कियों और लड़कों को साथ घूमते हुए देखते हैं तो हमारा खून जलता है। हमारे बच्चों की ये स्थिति बहुत गंभीर है और इस स्थिति का और कोई इलाज नहीं है। यू कैन नॉट कंट्रोल देम बाय एनी अदर मीन्स, यू हैव टू इम्यूनाइज देम, उसकी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा आवश्यकता है। हर समझदार मां बाप को अभी से सावधान हो जाना चाहिए, बहुत समय गंभीर आने वाला है, इससे भी ज्यादा। इसलिए आप चाहते हो, कोई ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं देखना चाहता है? कोई भी ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। कई बार हमने लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने इतने सारे घर के अंदर चीजों का प्रबंध किया है, गर्मी से बचने के लिए एसी लगा दिया है, चीजें खराब होने से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर रख दिया है। अरे ऐसी कोई आपके घर में मशीन है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके बच्चे खराब होने से बचें? खराब करने की मशीन जरूर रख दी है आपने, एक असुर एक आंख वाला असुर टीवी। ये टीवी का बी अगर कोई बंगाली बोलेगा तो बोलेगा टीबी है घर में, वो टीवी नहीं कह सकता, टीबी है। तो एक प्रश्न है ये मेरा हाथ जोड़ के कि आपने सब सुविधाएं तो घर में बच्चों को दी है, लेकिन उसको खराब होने से बचने के लिए कोई आपके पास ऐसी दवाई कोई ऐसा मशीन बनी है क्या? हाँ जी, है किसी के पास ऐसा कोई योजना, किसी के पास कोई ऐसी मशीन है? नहीं है तो हम आपको बताते हैं कितने की आपका फ्रिज और टीवी। अच्छा, फ्रिज के अंदर आप खराब बिगड़ा हुआ दूध और सब्जी रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा क्या? खराब को अच्छा कर सकता है फ्रिज? नहीं कर सकता ना। हम आपको वो मशीन बताते जो खराब को भी अच्छा करती, अच्छे को खराब होने से बचाएगी और खराब को भी अच्छा बना देगी, इसकी कीमत भी कुछ नहीं है। लेकिन ले जाने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको चाहिए ऐसी 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 आपको कोई मशीन चाहिए, ऐसा कोई यंत्र चाहिए? यू नीड सच थिंग बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट यूअर डियर वंस एंड नियर वंस फ्रॉम ऑनस्लॉट ऑफ द सिविलाइजेशन विच इज नॉट लेस देन एनिमलिस्टिक, नॉट लेस देन एनिमलिस्टिक। एनिमल कुछ भी रास्ते में करते कोई रोकता है क्या? जैसे लाल बत्ती है ना, देयर आर सो मेनी रेड लाइट्स ऑन द वे, कभी को गधा जाता हो उसके ऊपर रुकेगा क्या? उसके ऊपर आपका ये लफाफा खफाफा क्या बोलते हैं उसको, मुखालफा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। थिंक फॉर ए वाइल, थोड़ी देर विचार करना। व्हाट आई एम सेइंग इज मोस्ट अर्जेंट, डोंट वेस्ट ए मोमेंट, टेक इट वेरी सीरियसली। कल युग अपना भयानक रूप दिखाने जा रहा है और हमने कल परसों भी कहीं ये बात कही थी, फिर आपको कहते हैं कल युग को कोई नहीं रोक सकता है, कल युग के प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता है। कल युग की बुराइयों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, न सरकार रोक सकती है और न ही कोई शक्तिशाली धनवान रोक सकता है। जैसे बरसात को कोई नहीं रोक सकता है, कितना भी बलवान हो, राजा हो, महाराजा हो, बरसात को रोक सकता है क्या पड़ने से? तो कल युग को नहीं रोक सकते हो, बिगड़ते हुए वातावरण को नहीं बदल सकते हो, लेकिन बरसात नहीं रोक सकते हो, ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक छाता तो 100 रुपये का खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते? उससे अपने आप को भीगने से बचा सकते हो कि नहीं? गरीब से गरीब आदमी एक छाता खरीदता है, अपने आप को बचा सकता है कि नहीं? तो कल युग के प्रभाव को रोक नहीं सकते हो, बुराई की आंधी आ रही है उसको आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन अपने ऊपर कम से कम छाता तो ढक के बैठ सकते हो। और ये आध्यात्मिकता का छाता, भगवत गीता की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण का वचन, प्रति जाने प्रियोसी नमे भक्त प्रणश्यति, मेरी प्रतिज्ञा है, इट इज माय वो, आई एम गिविंग यू वर्ड्स, ये मेरी जबान है आपके साथ, प्रतिज्ञा करता हूं, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है क्योंकि मैं उसकी प्रोटेक्शन करता हूं। आपको चाहिए ये प्रोटेक्शन के नहीं? और पता है ये भगवान ने कब श्लोक कहा है? इस श्लोक के आगे वाले श्लोक का शब्द है, अपीचेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव मंतव्य सम्यक विवस्थितो ही स। अपीचेतस दुराचारो, दुराचारियों में कोई बड़े से बड़ा दुराचारी हो, खराबों में 100 दुराचारी इकट्ठे करो, उनमें से 3 चुनो, उनमें से जो पहले नंबर का दुराचारी हो वो भी अगर दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाक। लेकिन आज उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, बस इतना फैसला कर लिया है उसने। साधु रे व मंतव्य, उसको साधु मान लो। अर्जुन भगवान को ऐसे देखता है, भगवान ने श्लोक कहा कि आप क्या कह रहे हैं, पापी दुराचारी इतना बड़ा केवल ये कहे कि मैं बस आज से भगवत गीता का पढ़ता हूं और हरे कृष्ण जप लूंगा तो क्या वो साधु हो जाएगा? भगवान कहते हाँ हो जाएगा। क्यों? बोला सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, वो सही जगह पे आ गया है। जैसे कोई कहे एक आदमी बरसात पड़ी है, कीचड़ पड़ी है, चलते हुए गिर पड़ा है, चारों ओर से कीचड़ पड़ी हुई है और कीचड़ भी ऐसी है कि कचरा जहां पड़ा था उधर की कीचड़ है और दुर्गंध आ रही है, बेचारा एक नल को खोला है, पानी के टेप को खोला है, उसके नीचे बैठा है, लोग कहते अरे बहुत गंदा है, बोलता आप ठीक कह रहे हो, बैठा तो नल के नीचे हूं ना, थोड़ी देर में साफ हो जाऊंगा ना, जगह तो सही पे आ गया हूं ना, आई एम सिटिंग इन ए राइट प्लेस। बाबा नल के नीचे बैठने के बाद आप मुझे खराब नहीं कह सकते क्योंकि मैं धुलाई तो कर रहा हूं ना, तो प्रोसेस तो चालू कर दिया है ना मैंने, तो मैं नल के नीचे आके बैठ गया हूं। तो भगवान कहते सम्यक व्यवस्थित तो ही है, वो तो ठीक तरह से मेरे चरणों में आके बैठ। फिर भी अर्जुन कहते कितना टाइम लगेगा उसको साधु बनने में? भगवान ऐसे देखा, बोला क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब एक क्षण में धर्मात्मा बन जाएगा। और भगवान को थोड़ा सा रोष आ गया, रोष क्रोध का एक दूसरा रूप है जिसमें आप किसी का भला चाहते हो इसलिए थोड़ा सा जोर से बोलते हो, जैसे बच्चों को डांटते हैं उनका बुरा थोड़ी चाहते हैं। भगवान को थोड़ा रोष आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती के भगवान ने कहा अर्जुन तुम जाओ बहुत बड़ा ढोल ले लो और पहाड़ के ऊपर खड़े होकर उसको पीटो, सब लोग जब इकट्ठे हो जाए ना तब उनको बोलना कि मैंने कहा है, कृष्ण ने कहा है, न मे भक्त प्रणशति प्रति जाने, जैसे जाके मेरी प्रतिज्ञा उनको बताना कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, पूरे दुनिया के बीच में जाके ढंडोरा पीटना। मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, जाके ढंडोरा पीट के बोलो। ये भगवान ने थोड़ा सा रोष में कहा है, क्रोध में कहा है कि तुम क्या समझते हो मेरे पास आने के बाद भी कोई पापी रह जाएगा क्या? एक आदमी ऐसा था कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, मां बाप चाहते थे कैसे भी एक बार भगवान का नाम ले ले, किसी साधु संत को कहा, उसने जाके बोला भाई तुम एक बार हरी बोल लो, बोला नहीं बोलूंगा, हरी तो हरी हरी मिर्ची भी नहीं बोलूंगा। इसने बोला कोई बात नहीं मिर्ची काट लो, बाकी जो तुमने बोला है इसका सौदा कभी मत करना, कोई भी कुछ कहे इसके बदले में मत लेना, तुमने हरी मिर्ची कही है ना, मिर्ची को छोड़ो हरी को संभाल के रखना। मर गया, बहुत बड़ा पापी अपराधी था। यमराज ने कहा तुम्हारे से गलती से एक बार हरी तुमने कहा है, उसका फल चाहिए वो ले लो, बाकी तो तुमको सारी उम्र नर्क में रहना है। बोला उसका फल नहीं लेता हूं। इसने एक बात वो याद आ गई साधु की, उसका फल लूंगा नहीं मैं। बड़ा दुखी हो गया यमराज, बोला ये तो इसका क्या करो, इस हरी का फल क्या होता है, इसको लेता ही नहीं, अब नर्क में कैसे भेजू। वो लेके उसको गया आगे, ब्रह्मा जी आपने इसका देखो तो क्या भविष्य लिखा था, ये तो पाप तो बहुत बहुत ज्यादा की है, इसके रिकॉर्ड की हार्ड डिस्क की क्रैक हो गई, एक हरी वो भी पीछे मिर्ची लगी हुई है, अब इसका करूं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा हरी मिर्ची का तो समझ में आता है, हरी का क्या करना है समझ में नहीं आता है, चलो चलते हैं भगवान शंकर से पूछते हैं। भोलेनाथ समाधि में बैठा है, बाबा क्या बात है, तो खड़े साइड में खड़े हुए, बोले आंख कहीं तीसरी खुल गई तो भस्म हो जाएंगे, साइड में खड़े हुए बाबा देखा तो ब्रह्मा जी आया, यमुना जी क्या बात है सब इकट्ठे हो गए, बोला ये देखो ये खड़ा है पापी पहले नंबर का है, बोलने लगा तो मैं जानता हूं इसको, मैं इसको जानता हूं, ये मेरे मंदिर में आके ही नशा करता था। एक आदमी को मैंने कहा था कराची में, तुम मंदिर में नशा क्यों करते हो? बोला बात पुलिस पकड़ती है ना, यहाँ कम से कम भगवान की सेफ्टी तो है ना कम से कम यहाँ। बोला फिर करूं क्या इसका, क्योंकि प्राय ये धतूरा भांग नशा पीने वाले बेचारे भोलेनाथ के पास जाके बैठते हैं। बोला इसकी हरि का ये कुछ लेना नहीं चाहता है, ये चुप करके खड़ा है। इसने देखा ये सब परेशान है तो मैं मजा ले लेता हूँ। इसने बस सारी जिंदगी सबको परेशान किया, अब ये तीन और हाथ आ गए, इनको कर लेते और क्या है। आप भोलेनाथ कहते क्या बात क्या है? बोला ये इसने एक बार हरी कहा है, उसका बदले में कुछ लेना नहीं चाहता, इसके नरक का तो इसका पूरी कोटा तैयार पड़ी है। भोलेनाथ का हरी, चलो हरी के पास चलते हैं, पूछें क्या करना है। अब वैकुंठनाथ के पास खड़े हो गए, वो भोलेनाथ आगे खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, यमराज बाबा खड़े हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं, पधारिए आइए बैठिए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। लेकिन पीछे देखा कि ये वैकुंठ में आपके साथ है कौन? बोला महाराज इसी की समस्या की वजह से आए हैं। समस्या क्या है इसकी? बोला महाराज इसने एक बार हरि बोल दिया था मिर्ची के संग, अब इसके बदले में कुछ ले नहीं रहा है, इसका करें क्या? भगवान ने कहा एक बार जो मेरे सामने आ जाता है उसका आप क्या कर सकते हो, अब इसको यहीं छोड़ के जाओ, आप वापस जाओ, इसको अब यहीं छोड़ के जाओ ना। अब एक बार विष्णु के सामने भगवान का दर्शन कर ले तो फिर उसको कहां दुनिया में जाके कोई पाप भोगना पड़ेगा, ये पाप तो सब समाप्त हो गए। अब इसको यहीं छोड़ के जाओ, अभी आप जाइए अपने काम पे, इसको यहां रहने दीजिए। और वो देखता क्या मिर्ची आप लेते जाइए, हरी में को मिल गया आप मिर्ची। अरे कृष्णा, तो एक बार ऐसे गलती से भगवान का नाम लेने से इतना लाभ हो सकता है, तो क्यों नहीं प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर इस संसार में सुखी हो जाएं। भगवत गीता जीते जागते मानव के उद्धार का शास्त्र है। पांचवें अध्याय का एक श्लोक देख लेना, बहुत सुंदर श्लोक है कि जब तक ये शरीर समाप्त नहीं होता है उससे पहले काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेते हो तो समझ लो कि भगवान से हाथ मिला लिया है और तुम सुखी हो जाओगे। शक्नोति यह वसोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। ये इसके सामने जब मैंने ये पढ़ा, इसके सामने मैंने लिखा है जीते जागते आदमियों के लिए शिक्षा है, मरने के बाद की नहीं है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्रकृति का दिया हुआ शरीर जब तक नाश नहीं होता है उससे पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो सह लेता है, छोड़ूं का मतलब सह लेता है, वो समझ लो भगवान के साथ हाथ मिला लेता है। और जो भगवान से हाथ मिला जाता है वो सुखी नर है, क्योंकि वो नर नारायण के पास खड़ा है तो वो नर है, और जो उसके दूर उससे खड़े हैं वो सारे संसार में बहुत दुखी है। तो भगवान की ये शिक्षा इस जीवन में उतारनी है, और प्रेम और श्रद्धा के साथ बच्चों से शुरू कीजिए। लेकिन एक ध्यान आपको बता दूं, मैं बच्चों की बात शुरू तो की है, आपको एक बात, बच्चों को आप कितना भी कहें वो नहीं करेंगे। बच्चों को सिर्फ एक ही काम करने आता है, उसको कहते हैं इमिटेशन, है क्या, नकल, नकल करने आता है बच्चों को सबसे अच्छा। सो बच्चों को अगर आपको सिखाना है तो यू हैव टू डू योर सेल्फ, देन दे विल इमिटेट, इजीली दे विल इमिटेट। आप उनको कहेंगे नहीं नहीं बेटा आप ऐसे हो कि भगवान का नाम जपो और मैं अभी काम करने जाता हूं तो वो नहीं जपेगा। बच्चों को अब फिर मैं पूछता हूं एक बार, आप चाहते हो ना बच्चे आपके बहुत अच्छे बन जाए, तो हम आपको वो मैंने कहा था मशीन है, वो मशीन की बात बता रहा हूं, वो मशीन में कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। आप स्वयं अगर करोगे तो बच्चों को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप करने लग जाएंगे। यद यदाचरति श्रेष्ठ तद तद एवत्रो जनः स यत प्रमाणम क्रोते लोकस्तद अनुवर्तते। आप घर में बड़े हो, श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो कि नहीं हो? आपसे मैं पूछता हूं, आप घर में श्रेष्ठ हो कि नहीं हो? अगर नहीं हो तो मैं कथा समाप्त करता हूं। अगर आप मानते हो कि हम श्रेष्ठ हैं घर में अपने बच्चों के लिए, तो फिर प्रमाण बनो। यू शुड बिकम एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रेन। यू रीड एवरी डे, यू चैंट एवरी डे, देन योर चिल्ड्रेन विल फॉलो विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ऑटोमेटिकली दे विल जस्ट टेक इट एज इफ दे आर टेकिंग द टॉफी। ये तो टॉफी की तरह एकदम ले लेंगे, चॉकलेट समझ के, क्योंकि अगर आप खाओगे तो। So you do it, you practice it. हो सकता है आपको थोड़ा टाइम, बोलते हैं टाइम नहीं है, हो सकता है आपको परेशानी हो, लेकिन कड़वी दवाई बीमारी को जड़ से निकालने के लिए पीनी पड़ेगी। You may consider it is a bitter medicine, but you have to take it because you have to treat the disease. And the disease is not only within you, but it is spreading like a cancer in the whole civilization. ये कैंसर की तरह घर की चारों ओर फैल रही है। थोड़ी सी कड़वी दवाई पी लो। मेक श्योर एवरी डे यू डाइव डीप इन टू द मैसेज ऑफ गीता, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का बड़ा आनंद से रसपान करो, और बच्चों को बिठा के उनको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऐसा इम्यूनाइज कर दो, ऐसा इम्यूनाइज कर दो, बाहर उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़े। कुछ भी कोई कहे तो उसके उसको मालूम है कि मेरी माँ ने जो कहा है वही सत्य है, और कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरी माँ का कहा हुआ मेरे लिए सत्य है। और माता मैं आपको विनती करता हूं, ये तो पुरुष बेचारे सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, आपको घर में जो बैठी हैं, आप किले की आखिरी दीवार है, जो आध्यात्मिक और धर्म का किला है उसकी आखिरी दीवार अब नारी है। अगर आप अपने घर में संस्कार कुछ बच्चों के देंगे तो बच्चे संस्कृत होके और विकृत विकृत होने से, खराब होने से बच सकते हैं। जवाबदारी सारी आपके ऊपर है, आपको ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। आप इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चे पढ़ाने से नहीं सुन आपके अच्छे बन सकते हैं। वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं बहुत फराटे के साथ, लेकिन उसके साथ चांटा भी मार सकते हैं, और ये हमने देखा है। इसलिए आप उसको ऐसी शिक्षा दो कि सुबह उठ के पहले आपके चरण का स्पर्श करें, और एक दिन वो स्पर्श करेगा, जब आपके चरण को हाथ लगाएगा तो आपके हृदय से हो सकता है कि कोई ऐसी एक आशीर्वाद निकल जाए कि बच्चे के लिए वो कवच बन जाए। और माँ माता पिता की सेवा कब बच्चा करने सीखेगा? जब उसको अध्यात्मिका सिखाओगे। अध्यात्मिक आपके के अभाव में वो कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकता। इस पूरे विश्व के अंदर चरित्र बिगड़ रहा है क्योंकि आध्यात्मिकता का बहुत अभाव हो गया है। और ये प्रभुपाद 70 साल में वृंदावन छोड़ के सिर्फ इस दुख दुनिया के को देख नहीं सका था, इसलिए दिन रात एक कर रात को 2 बजे बैठकर इस भगवत गीता और भागवत को लिखा है, और हर एक भाषा में इसका अनुवाद इसलिए किया है जिसको जो भाषा आती है उसमें से ये दवाई वो ले ले। और बहुत सस्ता, अच्छे से अच्छी मेडिसिन, बहुत सरल से सरल ये मशीनें अपने घर में जाके लगाओ, और ये ऐसी है आपको और आपके सारे परिवार को सुरक्षित रखेगी। और भगवान का ये वचन आपके साथ है, इस भगवान के वचन को, भगवत गीता की शिक्षा को जीवन में धारण करोगे, आप दूसरों तक ये पहुंचाओगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।